تمام لوگ ادائی سے دوسرا کے درمیان شہید ہیں، سب کے احباب کی نندی کے لیے ایک بار پھر ضرور بھیجا محمد والا
سمجھ میں آتی ہیں کہ جو ہمارے نزدیک مادی صلاحیتوں سے کہیں باہر کی بات ہے،
लेकिन है इंसान के मानवीय वजूद के अंदर भी बहुत सलाहियत है। ये जो कुछ भी इंसान के अंदर है जो मैंने अर्ज किया कि हम इसे कम समझते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने तजुर्बे झेले हैं वो बताते हैं बहुत सलाहियत हैं, और जिसकी कुछ निशानियाँ हमें ऐसे मिलती हैं कि कोई थोड़ी जल्दे के मलबे के अंदर किसी और वजह से किसी बिल्डिंग वगैरह में फंस जाए बाद बीच बीच दिन के बाद जितना निकल आते हैं, थोड़ा सा पानी रिश्ता हुआ कहीं उनको मिलता रहे, तो ऐसे तजुर्बे बहुत हैं जो नाकाबिल तसव्वुर है कि इंसान को 20 दिन तक भी बगैर खाए जिंदा रहे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये फिर भी मानती वजूद है। खुदा ने नहीं मानते कितनी सलाहियतें इंसान की जो है मानती वजूद के अंदर रखी है। अब मानती वजूद को महदूद समझते हैं और उसके एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि नहीं महदूद नहीं है, ना महदूद है, इसकी सलाहियतें भी बना है। और गैर मानती वजूद के अंदर जो कुछ खुदा ने उसका हमने रखा है वो सलाहियतें कितनी है उसको तो हम तसव्वुर भी नहीं कर पाते। अलबत्त यहाँ पर एक बयान की ज़रूरत है, एक तशरीह की ज़रूरत है, और मैं अर्ज़ करता हूँ दुरूद भेजे हुआ मोहम्मद वाला इंसान के जज्बाती वजूद के अंदर जो सलाहियतें हैं वो बार बार इंसान को किसी गलती से भी दो चार कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कोई हिंदू है, ना उसका दीन से कोई ताल्लुक है, ना उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना खुदा है, वैद्य अर्थात किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, और बाद तो आपको कोई ऐसा काम करके दिखा देगा और उस पर आपकी वजह अकल दंग रह जाएगी, और उसके साथ वो कहना चैलेंज भी कर दे कि अगर तुम हक करो तो तुम करके दिखा दो। और न सिर्फ जैसे मैंने हिंदू की मिसाल दी, इसी तरह मुमकिन है कि कोई ऐसा खुदा का मुमकिन कोई काम करके दिखा दे। जितनी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर कोई जादूगर है, वो ज़ाहिर बहुत सारे जादूगर तो सिर्फ सहबंदी कर रहे होते हैं आँखों के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई वाकन भी ऐसा निकल आए मुमकिन कोई जादूगर भी दिखा दे, तो इंसान बार बार ऐसे वाक़े के ऊपर ताज्जुब के साथ देखना शुरू कर देता है कि खुदा मैं हक पर हूँ और मेरे पास ताकत नहीं है, और वो बातिल पर है और उसके ऊपर उसके पास ताकत है, इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बहुत सादा से ये है कि इंसान के तौर पर अगर आप ड्राइविंग करते हैं और किसी ड्राइवर को जो काफिर है जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसको बहुत अच्छी ड्राइविंग करते देखते हैं तो क्या आपको अपने हक पर होने में शुभ होता है क्या? मसलन वो आदमी ड्राइविंग बहुत अच्छी करता है और उसके बाद अगर वो ये दावा करे अगर तुम हक पर हो तो तुम मेरी तरह ड्राइविंग करके दिखाओ, तो आप उसको जवाब में क्या कहेंगे? भाई अगर मैं तुम्हारी तरह इतने घंटे ड्राइविंग सीखने पर प्रैक्टिस करने पर लगा तो मैं भी कर लेता हूँ, और एन मुमकिन है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारे वजूद के अंदर खुदा की तरफ से ऐसी सलाहियतें मौजूद हों जो ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी हों, उनको तुमने इस्तेमाल करके इतनी अच्छी ड्राइविंग करके दिखा दी। इस ड्राइविंग के मामले में आप हक और बातिल को नहीं सोचेंगे, कोई ड्राइवर ये काम नहीं करेगा कभी। या मिसाल के तौर पर कोई जहाज बहुत अच्छा चलाता है और वो कहे कि मैं चूंकि जहाज बहुत अच्छा चलाता हूँ ज़्यादा मेरा दीन भी सही है, और अगर तुम्हारा दीन सही है तो तुम जहाज चला के दिखा दो, कोई दावा नहीं करेगा, आप अपना कबूल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही गैर मादी चीज़ों के बारे में कोई आदमी अपनी सलाहियत दिखाता है तो वो दावा भी करना अपना हक समझने लगता है और हमारा मुतासर भी हो जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि गैर मादी सलाहियतें जो इंसान के वजूद के अंदर हैं वो सिर्फ हक पर चलने के नतीजे में पॉलिश की जा सकती हैं, बेहतरी लाई जा सकती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह ड्राइविंग है हक और बातिल का कुफ्र और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, जो ड्राइविंग करेगा मेहनत करेगा ड्राइविंग सीख लेगा, जो जहाज चलाने की कोशिश करेगा जहाज चलाना सीख लेगा, कोई आदमी मिट्टी के एक ढेर को एक बर्तन एक जगह पे रखे और उसको अपने उंगलियों की हरकत के जरिए से बर्तन में तब्दील कर ले उसके बाद कहे तुम हक करो तो तुम बर्तन बना के दिखाओ, तो हम कहेंगे कि भाई ये बर्तन बनाना कोई मसला नहीं है, अगर मैं प्रैक्टिस करता तो मैं भी बना लेता, मैंने प्रैक्टिस नहीं की। बिल्कुल इसी तरह रूह के कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ महारत की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी कर लेंगे, आप उन तजुर्बों से गुजर जाए हैं जिससे जिन तजुर्बों से वो गुजरा था, आपके रूह में भी वही सब कुछ जाहिर होना शुरू हो जाएगा। इन मामला के अंदर हक और बातिल की कोई तासीर नहीं है, और इन मामला की फहरिस्त भी बहुत तुलनीय है, इस मामला की मेहनत भी बहुत पुरानी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपने जहन से मेहनत करे तो क्या ये कर सकता है कि कुछ धातुओं को मोल्ड? हाँ कर सकता है,
इससे हक और बातिल जाहिर होगा, नहीं कोई हक और बातिल जाहिर नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर मेहनत करें और आप उन तजुर्बों से गुजरे जिन तजुर्बों से वो गुजरते हैं, प्लस कुछ जाती सलाहियतें, जिस तरह हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ जाती सलाहियतें होती हैं, एक आदमी मैनेजमेंट का माहिर होता है, एक आदमी मैथमेटिक्स का माहिर होता है, एक आदमी फिजिक्स केमिस्ट्री का माहिर होता है, हर एक के अंदर कुछ जाती सलाहियतें होती हैं और उसके ऊपर मेहनत और तजुर्बा, तो उसके बाद वो एक नतीजे तक पहुंच जाता है। गैर मानती चीजों में भी ऐसे ही है, गैर मानती चीजों में भी कुछ चीजों की जाती सलाहियतें होती हैं, उसके बाद वो एक तजुर्बा करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसके नतीजे में एक नतीजे तक पहुंच जाता है। ना इसका हक से कोई ताल्लुक होता है, ना इसका बातिन से कोई ताल्लुक होता है। इस मामले में कह सकते हैं ये चीजें सेकुलर है, इनका हक और बातिन दीन बेदीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं उनका ताल्लुक हक और बातिन से है, उनका ताल्लुक दीन और बेदीन से है। मैं पहले उनकी एक दो मिसाल दे दूं जिनका हक और बातिन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उसकी मिसाल दे दूं जिसका ताल्लुक हक और बातिन से है, दीन और बेदीन से है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है कि अपने जिस्म के साथ कई जगहों के ऊपर पहुंच जाए, किसी और जगह पर पहुंच जाए? मैं कई की बात अभी फिलहाल ना करूं, आसान से शुरू करते हैं। मसलन कई मुमकिन है कि आप अपने वजूद को लेकर, मादी वजूद को लेकर हवा में उड़ जाएं, कई मुमकिन है। क्या इसके लिए दीन की जरूरत है या बगैर दीन के भी हो सकता है? अच्छा, जाहिर तौर पर अगर हमारे साथ में कोई ये कर दे तो ये मुजज़ा हो जाएगा, हमारे नजदीक इस बात की दलील बन सकेगी कि इसका खुदा से कोई ताल्लुक होगा, वरना ये काम नहीं हो कर सकता होगा। एक्सपर्ट्स के नजदीक ये काम तो मुश्किल काम नहीं है, मेहनत से हो सकता है। अजीब हफीस वाक्य मौजूद है, एक आयतुल्ला कश्मीरी हुआ करते थे, काफी अर्से पहले फौज में कौम में हुआ करते थे वो, और उससे पहले नजफ अशरफ में हुआ करते थे, सद्दाम की दौर में कौम में तशरीफ गए थे, वहां जिंदगी गुजारते थे। आयतुल्ला कश्मीरी ने मानवियात के ऊपर और इस तरह के उमूर पर काफी मेहनत की हुई थी, तो वो इस तरह के अजीब व गरीब उलूम के माहिर समझे जाते थे, जिनका हम लोग फारसी जबान में उलूम में गरीबा तारीफ करते हैं, हमारे जिसको हम अजीब व गरीब कहते हैं वहाँ पर गरीब उलूम कहते हैं। गरीब का मतलब ये जिनसे लोग कम आशना है, कम आशना, गरीब का मतलब हमारे फकीर लिया जाता है, लेकिन बार गरीब उलूम का मतलब होता है यानी जिससे लोग कम आशना है, गुर्बत उनकी ज्यादा है, तो वो उन उलूम में गरीबा के माहिर समझे जाते थे। तो उनका एक वाक्य लिखा हुआ था, मैं एक जगह पढ़ रहा था, कि उनके सामने नजफ में एक आदमी आया, उसने सुना कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों के ऊपर कुछ महारत है, तो उसको बताया गया कि यह आयतुल्ला कश्मीरी है, इनके पास बहुत महारत है। तो वो उनके सामने पहुंचा और उसके सामने पहुंच कर उसने अपने आप को जमीन से खड़े खड़े बुलंद किया, थोड़ा सा बुलंद किया, वो चंद फुट ऊपर लेकर गया और अपने आप को ऊपर ले जाकर कहने लगा कि कर सकते हो ये? आगा कश्मीरी से कहा कि कर सकते हो? आगा कश्मीरी ने नालायक में से एक उतारी तो हवा में उछाला, उसने इतना उसके सर पे मारा कि जमीन पे आकर गिर गया। इस तरह की महारतें दीन बेदीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जो चाहेगा कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैंने अभी मिसाल में अर्ज किया, आप अपनी आंखों को इस्तेमाल करें, जहन को इस्तेमाल करें, धाक से धाक को मोड़ने की कोशिश करें, मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी? कराची में एक आदमी है, वो ट्रेनिंग देता है इस बात की, एक आदमी है उसको ट्रेनिंग सेशन करता है इस काम के, और वो किसी भी स्टूडेंट को कहेगा कि भाई तुमसे कौन करना चाहता है, और उनमें से एक दो टेस्ट की बात कहता है तुम नहीं कर सकोगे, तुम कर सकोगे, तुम कर सकोगे, तो इसी तरह स्टूडेंट्स में से एक को निकाल के लाता है और थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात कहता है तुम करो और हो जाता है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो क्या कहेंगे? आम आदमी बस, आप किसी देहात में चले जाइए, चमचा उठाइए और मोड़ के दिखा दीजिए, उसके बाद जो मांगना है मांग लीजिए, ये क्यों होता है ऐसा? अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इस पर एक जुमला और इजाफा कर लूँ, चंद जुमला, वो ये कि मेडिकल साइंसेज में भी ऐसा ही है। मसलन मैं ये सोचता हूँ कि आज से 500 साल पहले अगर किसी को बुखार हो, मर रहा हो, एक आदमी 2 ग्राम की एक गोली निकाले, उसके मुंह में रख दे, उसको शिफा दे दे, तो लोग कहेंगे मुआवजा हो गया, और आज हम सब लोग ये काम कर सकते हैं, पर बहुत सस्ती भी है, रुपए 2 रुपए की मिल जाती है। जो चीज 500 साल पहले मुआवजा कहलाती है, आज 2 रुपए में पैनाडोल टैबलेट मिल जाती है, उसके मुंह में रख ले बुखार उतर जाएगा उसका। तो ये सब कैसे हुआ है? जैसे जैसे लोगों का इल्म बढ़ता चला जाएगा, उनको ये पता चलता जाएगा कि असल मुआवजा कौन सा है। अब आप तस्वुर करें इमाम उस जमाने में आएंगे जो इंसानी उलूम की इंतहा पे पहुंचा हुआ जमाना होगा, छोटे मोटे मौजूदात नहीं होंगे, फिर कोई ऐसी चीज जाहिर होगी जिसको दुनिया के उलूम के माहिर जो ताकत बशरी में उस वक्त तक था वो उनके सामने सर झुकेंगे कि ये कोई बड़ी बात है। बहरहाल मैंने दो तीन मिसालें आपकी खिदमत में ऐसे अर्ज की। अब ये कि किस चीज का ताल्लुक दीन और बेदीन से, उसके बारे में हम क्या कहते हैं, ये चंद जुमले इसके लिए अर्ज कर दूं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले फिर याद आता है एक वाक्य रजब अली खयात का, जिनकी किताब आपके सामने कई दफा मुख्तल लोगों ने रेफरेंस के तौर पर कही होगी कि उसने खुदा को पा लिया, जिसका दूसरा तर्जुमा फिर मैंने खुदा को पा लिया करके हुआ। उस किताब के अंदर भी वाक्य लिखा हुआ है कि वो तेहरान में किसी आरिफ को नसीहत करने के लिए रवाना हुए और देखा कि एक इलाके के अंदर, एक सुनसान इलाके के अंदर एक साहब बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठ कर इबादतें और रियाजतें कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक क्या किया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसको मिसाल के तौर पर नाशपाती या अमरूद में तब्दील कर दिया, कहा कि ये किया। तो उन्होंने उसको दोबारा हाथ में लिया, दोबारा पत्थर बना के कहा कि ये तो जादूगरी है, बताओ अल्लाह के कुर्ब में क्या हासिल किया, ये सब जादूगरी है। यानी ये वो चीजें नहीं है जो कुर्ब खुदा की निशानी है, और हम इन्हीं चीजों को कुर्ब खुदा की निशानी समझते हैं, ये कुर्ब खुदा की निशानी नहीं है। ये ताकत और तवानाई है, जिस तरह दुनिया में ड्राइविंग करना एक ताकत है, एक हुनर है, एक सलाहियत है, मिट्टी के पुर्जे बनाना एक सलाहियत है, लोहे को पिघलाना सलाहियत है, शीशे को पिघला कर कुछ तस्वीर बना लेना, कुछ चीज़ें बना लेना सलाहियत है। इसी तरह आप अपने रूह के ऊपर मेहनत करें, पत्थर को कुछ बना लें, फला चीज़ को कुछ और कर लें, ये सब चीज़ें सलाहियतों के अंदर है। असल क्या है, वो हकीकत क्या है जहां तक वो पहुंचाना चाह रहे थे, ये कि आपके सामने गुनाह आए और आप गुनाह ना करें, ये असली काम है। बाकी सब चीजें सलाहियतें ये सब हो जाती हैं। लिहाजा आप ताज्जुब के साथ देखेंगे कि बाद लोगों के अंदर ये सलाहियतें अजीबोगरीब होंगी, लेकिन मादियात का मुकाबला नहीं कर सकती, मादा परस्ती में मुबतला होंगी, अपनी लज्जतों और शहवतों का मुकाबला नहीं कर सकती। और इंसान ताज्जुब से देखेगा कि इसके अंदर ये सलाहियत भी है और एक गुनाह पे ढेर हो गया, क्योंकि ये वो सब दुनियावी चीजें जो मुख्तलिफ रंगों में जाहिर होती रहती है। और असल और एहसास क्या है, असल और एहसास ये है कि इंसान बंदे खुदा बन के रहता है, असल बंदगी है। बाकी तमाम चीजें सलाहियतों में शुमार की जाती हैं, कस्बी हैं, कस्ब की जा सकती हैं, और ये सब दुनिया की खातिर भी हो सकती हैं। तो ऐ मुमकिन है कोई दुनिया की खातिर पत्थर को कुछ बना ले, ऐ मुमकिन है कोई दुनिया की खातिर यहाँ से वहां होकर चला जाए, लेकिन आखिरकार ये है कि एक ही सवाल करना पड़ता है, अब जो खुदा है, जो बंदा है खुदा है, उसने कमाल किया है, चाहे उसके अंदर कोई सलाहियत नजर ना आए, इन सलाहियतों से मामला तय नहीं होते। वरना मैं आपकी दरख्वास्त कर चुका हूँ, बास कुफार आपको मिल जाएंगे जो सलाहियतें बहुत माहिर होंगी, और ये डॉक्यूमेंटेड चीजें, यानी एक दफा तो आप सुनी सुनाई कहते हैं कुछ चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, यानी डॉक्यूमेंटेड चीज है। तो ऐसा ना होता, अपने उलूम की सतह को थोड़ा सा ऊपर लाइए, तो जिन चीजों को आप मौजाद समझ रहे हैं जाहिर तौर पर वो मौजाद नहीं है, बहुत सादा बात है। और ये इंसानी जहन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें जिनको करने के बाद आप और मैं कहते हैं ये हमारा मुआवजा है, इनमें से कोई चीज मुआवजा नहीं, करामत भी नहीं है। आज पैनाडोल खिलाकर किसी को शिफा देना ये करामत है, ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को वहां से वहां ले जाना ये करामत है, मुआवजा तो छोड़ दें करामत है क्या, करामत भी नहीं है। जहन इंसानी को तरक्की पा लेने दें, फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हम समझ रहे थे कि मौजूद नहीं, मौजूद नहीं है, वो सब के सब करामत के दर्जे से लिए जाएंगे, रूटीन्स बन जाएंगे, और असल मौजूद फिर उस वक्त जाहिर होंगे, फिर वो वक्त होगा जब असल मौजूद जाहिर होंगे, और उन असल मौजूद में कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो इंशाअल्लाह इंसानों की हिदायत का सबब बनेंगी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले सब। यहाँ पर एक सवाल और भी है कि इंसान अपनी इबादतों के पीछे इन मौजज़ा नुमा सलाहियतों को कर्ज करे या ना करे, अल्लाह से तलब करे या ना करे, یعنی مثال کے طور پر ایک انسان نمازیں پڑھے، دعائیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، مختلف اچھے اعمال کو انجام دے اور خدا تعالیٰ سے کہے کہ خدا مجھے اس قابل بنا دے کہ میں مستقبل دیکھ سکوں. آیا یہ کرنا اچھا ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی عبادتوں کے اندر بڑھتا رہتا ہے، خدا کچھ صلاحیتیں دیتا رہتا ہے جن پر وہ توجہ نہیں دیتا، نہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، یہ غلط ہے مسئلہ. ایک دفعہ ہوتا ہے انسان ان عبادتوں کو انجام ہی اس لیے دیتا ہے کہ اسے کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ملتی ہیں. آیا یہ مطلوب ہے؟ آیا اس کو خدا تعالیٰ نے چاہے کہ طلب کرنا ہے؟ پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت دے دی کسی وجہ سے، کیا اجازت ہے کہ اظہار کرے؟ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے اگر کسی عبادت کے نتیجے میں کسی حقیقت کو کشف کر دیا ہے تو دوسروں کو بتائے کہ میری یہ حقیقت کشف ہوئی؟ کیا اس بات کی اجازت ہے؟ مولانا جلال الدین رومی بظاہر اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے اندر بہت سارے حقائق نظر آتے ہیں. بعید ہے کہ حب اہل بیت کے بغیر کوئی اس جیسے کسی مقام پر پہنچ جائے، اس کے بغیر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اثرات ہیں جو ہم سے مخفی رہے ہیں. مولانا جلال الدین رومی کے استاد ہوا کرتے تھے جس کو شمس تبریز کہا جاتا تھا. میں حاشیے میں اس بات کا تذکرہ کر دوں شمس تبریز کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد والا. ہم میں سے جو کوئی بھی ملتان گیا ہے اس نے وہاں پہ شمس تبریز کا نظارہ دیکھا ہوگا، تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شمس تبریز نہیں، تقریباً سکون سے کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو تاریخ وفات وہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ مولانا جلال الدین رومی کے استاد شمس تبریز کی تاریخ وفات سے بہت بات کی، یعنی سمجھ لیجیے کہہ سکتے ہیں صدیوں کا فرق پڑ رہا. تو ہم اب اس کو نہیں مان پائیں گے کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کے استاد شمس تبریز کا مزار ہونا چاہیے، گرچہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہاں پر جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شمس تبریز کا مزار ہے، لیکن بظاہر اس سے کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. اس طرح دو تین مزار اور ہیں دنیا کے اندر جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ شمس تبریز کے مزار ہیں. ایک اتفاقی طور پر واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ہم کوئٹہ گئے، کوئٹہ سے آگے ایک علاقہ زیارت نام کر کے تفریحی علاقہ ہے جو مشہور ہوا ہے قائد اعظم کے آخری ایام محمد علی جناح نے وہاں پہ گزارے تو اس وجہ سے مشہور ہوا. فوراً ہم بھی ایک دفعہ وہاں پر گئے، وہاں پہ پتہ چلا کہ کسی پیر اور ولی کا مزار ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک مزار ہے کسی پیر کا اور اس کی وجہ سے اس کو مزار شریف مزار کہا جاتا تھا، زیارت کہا جاتا تھا. تو زیارت کا لفظ کہتے ہیں کہ اس زیارت گاہ کی وجہ سے مشہور ہوا. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا جا کے دیکھنا ضرور چاہیے. اب نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو تعجب ہوا کہ وہاں پہ لکھا تھا شمس تبریز، وہاں پہ لکھا تھا شمس تبریز. اچھا خیر ہم نے ناباوری کی حالت میں فاتحہ پڑھ ڈالی، ہم نے کہا ان شاء اللہ اللہ کا بندہ ہوگا، اچھا ہوگا، اور یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے کہ شمس تبریز یہاں پر ہو. تعجب کی بات یہ ہے کہ موجودہ جو تحقیقات انجام پائی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہی خبر صحیح ہے، وہی خبر شمس تبریز کی خبر. اور اس میں کافی محنت ہوئی ہے شمس تبریز کی اور محمد جلال الدین رومی کی جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر محنت کی. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوئی تھی جس کے اندر ایک ایرانی اسکالر نے ریسرچ ورک کے بعد ثابت کیا تھا کہ وہی شمس تبریز کا مقام ہے. تو انسان بہت تعجب میں آ جاتا ہے کہ قبروں کی ابتدا کیا ہوتی ہے اور انتہا کہاں پہنچ جاتی ہے. البتہ یہ تو مثبت تھی جو بعد میں اس علاقے کے لوگوں کے پاس ہو گیا، نہیں معلوم ان کو کیا کرتے ہیں وہاں پر. بعض اوقات بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور آپ ان بات کو شاید جانتے ہیں کافی حد تک. یہ کہ یہاں لاہور میں کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر، میں بھی یہاں آنے سے پہلے لاہور میں تھا وقت کے لیے، تو وہاں پر ایک جگہ پہ ایک مزار ہے، ایک پیر میں بھی کیا نام لوں بار ان کا مزار ہے. تو وہاں پہ معلوم کیا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کن صاحب کا مزار ہے، ان کی تاریخ وفات کیا ہے. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ مزار اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے، ہم نے اپنی مزار آنکھوں سے بنتے دیکھا ہے. اور ہم نے اس طرح سے تھا کہ یہاں پر ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا جو گورنمنٹ کے کاموں کو نکلوانے کے لیے پرچیاں دیا کرتا تھا، और वो कुछ अर्से गायब हो गया, वो पीर गायब शाह का मजार बन गया, पीर गायब शाह का मजार बन गया। अब ठीक, क्योंकि वो पीर किस बात का था, वो पीर इस बात का था कि गवर्नमेंट के कामों के लिए पर्चियां दिया करता था कि फला ऑफिसर को ये पर्ची दिखाना काम हो जाएगा, तो लोग उसके धारे पर्चियों पर चला करते थे और पर्चियों के बाद उसको कुछ बेनिफिट्स थे मुख्तलिफ किस्म के आजकल। उसके बाद वो कुछ अरसे तक तो पर्चियां देता था, बड़ी पब्लिक वहां आती जाती थी और उसका काम भी चल रहा था, लोगों का काम भी चल रहा था। फिर कुछ अरसे के बाद वो गायब हो गया। जब वो गायब हो गया तो वो के अंदर एक डिमांड थी कि वो बंदा कहाँ गया जो पर्चियां दिया करता था, तो वो ये मशहूर हो गया कि पीर गायब हो गया। तो कुछ अरसे तक तो ये मशहूर रहा कि पीर गायब हो गया, फिर कुछ अरसे के बाद वहां पे एक मजार बन गया और वो मजार पीर गायब शाह का मजार बन गया। यानी जो आदमी गायब हो गया था उसका मजार है वहां पर। और अब जो है वो लोग समझते हैं यहाँ एक पीर है जो जिसके अंदर गायब होने की ताकत थी, उसकी खबर है यहाँ पर। अब सोचिए जरा कहां से कहां बात पहुंच गई। और ये सब गलतियां क्यों होती हैं? नादानी की वजह से। लोग ऐसे नहीं कि जो लोग वहां पे आ रहे हैं बेचारे मक्कार है नाउज़ुबिल्लाह, या मसलन वो किसी जुर्म का मुर्तकिब हो रहे हैं, नहीं जानते नहीं है बेचारे, जानते नहीं है कि तारीख बहुत अजीब गरीब जगह है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंसान जो भी काम कर रहा है पहले अपने अंदर गौर कर ले किस अंगीजे के तहत कर रहा है, किस जज्बे के तहत कर रहा है, इस जज्बे की अफालियत यहाँ पे साबित हुई है नहीं हुई है, उसके बाद काम करता है। बात ये थी कि इंसान के वजूद में सलाहियतें हैं और उसके अंदर कुछ मानवीय सलाहियतें हैं, उन मानवीय सलाहियतों का जो गैर मानवीय सलाहियतें हैं कुछ इस्तेमाल ऐसे हैं जिसके लिए दीन और मजहब की जरूरत नहीं है, वो जो हासिल करना चाहे हासिल कर सकता है। और कुछ सलाहियतें ऐसी हैं जिनको हासिल करने के नतीजे में असल मकाम हासिल होता है, और वो जो असल मकाम है वो कोई कमाल ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं। असल मकाम जो है वो बंदगी है कि अल्लाह अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह की फरमा बरदारी करे, उसकी इताअत करे। अर्ज हुआ इस दौरान में अगर कोई चीज मुरादे मुताल अता कर दे तो इंसान उसको ले सकता है, लेकिन क्या उसके पास इजाजत है कि वो दूसरों को बताए कि मुझे क्या अता हुआ, ये बात बेजाहिर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी का तस्करा हुआ था शेर की खातिर, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि हर चेरा असरार हक आमोखतन मोहर कर दन वजदहन रादूखतन, यानी जिस किसी को भी खुदा ने अपने राज बताए उसके मुंह पर एक मोहर लगाई है और लबों को सी दिया है कि जो साहिब असरार हैं वो अपने असरार को बरमला नहीं करते। और इन तमाम साहिब असरार के उस्ताद कुल मौला अमीर उल मोमिनीन की ज़ात मुक़द्दस कर अल्लाह उनकी ज़ात करार पाती है कि जिन असरार को वो लेकर चले और उन असरार को बादोपात मसलन सहराओं के अंदर कुओं की तरफ रुख करके बयान फरमा दिया, और उनमें से कुछ असरार उनकी कुछ शागिर्दों तक पहुंचे, तो उनके शागिर्दों में रहने वाले बाद शागिर्द उन दूसरे शागिर्दों के असरार को नहीं संभाल पाए। ज्यादा हमारे पास रिवायत मौजूद है कि अगर उनके शागिर्दों में से किसी ने एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन अब्बास के सामने कुछ असरार बोलने की कोशिश की तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि ये इल्म गैब है और हमें इल्म गैब हासिल करने से मना किया गया, और शागिर्द ने कहा कि नहीं ये इल्म गैब नहीं है, ये अमीर मोमिनीन ने इल्म हमें सिखाया, ये इल्म गैब नहीं है जो तुम्हें समझ में आता है कि मना किया गया। तो ये सब का सब है। अब हमारे माशरे के अंदर इस तरह से है कि हम इन तमाम उसूलों से वाकिफ नहीं हो पा रहे, हमारा माशरा इन तमाम उसूलों से वाकिफ ना होने की वजह से एक अजीब कश्मकश में फंस जाता है। यानी मसलन फर्ज कीजिए किसी को कोई चीज अलैहिस्सलाम की किसी ख्वाब में नजर आ जाती है, बरमला इजहार करता है, बरमला इजहार करता है, और इस इजहार के नतीजे में जो पहली चीज हासिल होती है मुझे क्या इसको दूसरी नहीं मिली, अब इसको दूसरी नहीं मिली। अच्छा मुमकिन है कोई ये कह कि नहीं एक आदमी बरमला इजहार करता भी है फिर भी उसको बार बार मिलती है, अब नहीं मालूम जो कुछ मिल रहा है इसको क्या मिल रहा है। ये दुनिया बहुत अजीब है और शैतान जानता है कि किस इंसान को किस तरीके से धोखा देना है। तो हद तक इनका इंसान कोशिश करे कि अगर उसको अहबलम की तरफ से तो फतन कोई चीज नसीब हुई है, हद तक इनका कोशिश करे उसको संभाल के रखे। और बाज़ अवकात जो इंसान चाहता है वो ये कि इसकी तशरीह कहीं से हासिल करे, तो जिस खुदा ने कोई चीज सिखाई है वो तशरीह भी सिखा सकता है। खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर उसने कोई चीज सिखाई तो तशरीह भी सिखा सकता है। तो इसकी खातिर भी बयान करने की कोई खास जरूरत जो है समझ में नहीं आती। इंसान को अपने नफ्स के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और ये तमाम हालतें इंसान के अंदर हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, इसका बंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐ मुमकिन है कि आपने बहुत बंदगी की हो और ऐसी कोई सलाहियत नसीब ना हो, ये ऐ मुमकिन है। तो खुदा तआला नहीं चाहता कि उन सलाहियतों को देकर आपको आजमाए, नहीं चाहता कि उन सलाहियतों को देकर खुदा न करे नाउज़ुबिल्लाह कोई मिसयूज हो जाए और उसके नतीजे में आप उन कमालात से महरूम हो जाए। हत्तल इम्कान इन चीज़ों पर तवज्जो मत दें, जितना मुमकिन है अपनी बंदगी पर तवज्जो दें। अहम तरीन काम यह इंसान की जिंदगी के अंदर वो ये कि अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ जाए और इस मामले को समझने की कोशिश करे कि फर्मा बरदारी में रुकावटें क्या क्या हैं, इसको किसी तरीके से हल करें। अब यहाँ नफ्स इंसानी में जहाँ बहुत सारी ताकतें हैं, इस नफ्स इंसानी के अंदर बगावतों के भी बहुत सारे अंदाज हैं, इसके बहानों के भी बहुत सारे अंदाज हैं। तो हर आदमी का बहाना मुख्तलिफ किस्म का है, हर आदमी के लिए शैतान का वसवसा मुख्तलिफ किस्म का है। एक दो मिसालें जो बहुत राइज मिसालें हैं हमारे माशरे के अंदर और हम लोगों के और आपकी जिंदगी के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और इसमें से कुछ इसका काउंटर इलाज बताने की कोशिश करते हुए जिस दुआ का आज इंतखाब किया उसको बयान करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले शैतान के बहानों में से बहुत सादा एक बहाना जो हमारी और आपकी जिंदगी में तकरीबन हर नमाज के दौरान जाहिर होता है वो ये है कि वो किसी ऐसी चीज को मुश्किल बयान करेगा जो असल में मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप अल्लाह के नाम में पढ़ने लगेंगे वो मुश्किल बना देगा। कुरान करीम शैतान की इस वसवसे को बयान फरमाता है, फरमाता है ज़य्यना लहु शैतान आमालहु, कभी फरमाता है शैतान आमाल को मुज़य्यन कर देता है, बुरे को अच्छा बना के दिखा देता है। और कहीं फरमाता है कि ये शैतान क्या करता है, युखव्विफ औलिया, ये अपने मानने वालों को खौफ देता रहता है, खौफ ज़दा करता रहता है। तो मुमकिन है कि शैतान क्या करेगा कि आपको और हमें अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने में खौफ ज़दा करता रहेगा कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जिंदगी में ये मुश्किल आएगी, इस तरह से मुसीबत में फंसोगे, ये सब कुर्बान करना पड़ेगा। इस मौके में हल क्या होना चाहिए, मसलन अगर नमाज के अंदर इस तरह की कोई हालत पेश आ रही है या आम जिंदगी के अंदर दीन के ऊपर अमल करने में मुश्किल कोई पेश आ रही है तो थोड़ी सी देर के लिए इंसान तौहीदी निज़ाम को अपने अंदर दोहराने की कोशिश करे, तौहीदी निज़ाम को अपने अंदर दोहराने की कोशिश की। एक कुल्ली कानून अर्ज करता चलूँ, जब भी हमारे और आपके अंदर कोई कमजोरी आएगी अकायद की किसी कमजोरी की वजह से, जब भी कोई कमजोरी आएगी मसलन शैतान के मुकाबले में अपना कमजोर पाएंगे नाउज़ुबिल्लाह खुदा न करे, या मसलन किसी वसवसे के मुकाबले में कमजोर पाएंगे, कहीं ना कहीं कमजोरी तौहीद की वजह से होगी। अब मैं इस साला से मिसाल को तौहीद की कमजोरी की तरफ ले जाते हुए बयान करता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मान मामूली तरीन सादा तरीन उमूमी तरीन शैतान के खौफ दिलाने में से एक खौफ मुस्तकबिल का खौफ है। शैतान मुस्तकबिल का खौफ बहुत दिलाता है इंसान। जब इंसान अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करेगा शैतान मुसलसल डराएगा कि मुस्तकबिल में क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, मतलब उस मुस्तकबिल में एक खौफ अपना दिलाता है कि तेरा क्या होगा और इससे बढ़कर खौफ दिलाता है औलाद का क्या होगा। ये शैतान की पेचीदा तरीन मकारियों में से एक मकारी है और हम जानते हैं कि मिसाल के तौर पर कितने हसास मौकों में शैतान ने इस मकर से इस्तेफादा किया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान कूफा की वो तारीख पढ़ता है जहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील लोगों को तैयार कर रहे थे और देखता है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील दारुल अमारा के सामने थे और लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील को छोड़ के चले गए और खौफ क्या था, और वो खौफ ये था कि कुछ खवातीन आई और उन्होंने अपने मर्दों से कहा कि अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा और तुम चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो वजूद कम होना शुरू हुआ और मुस्तकबिल के खौफ को देखते हुए बहुत बड़ा काम जो उस मौके पर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इंसान अगर अपने ज़हन में बस इतना सा सोच ले कि अगर उस मौके पे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद शिकस्त दे दिया जाता तो नहीं मालूम मुस्तकबिल क्या हो जाना चाहिए। अब ये जो शैतान का खौफ है इसका हल क्या है? मैंने अर्ज किया इसका इसका जो बेहतरीन हल है वो तौहीदी निज़ाम को अपने अंदर दोहराने की कोशिश करें कि तौहीदी निज़ाम हमसे क्या कहता है। सादा तरीन बातों को लेकर चलते हैं। मसलन फर्ज कीजिए मैं दुश्मन के सामने गया तो अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मैं दुश्मन के सामने खड़ा हुआ और उसकी दीवी जर्ब से मैं जख्मी हो गया। अगर खुदा चाहे तो क्या बचा सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं वो जर्ब लगाए और मैं जख्मी ना हो। अच्छा अगर जख्मी हो गया तो क्या होगा? ऐ मुमकिन है कि मेरा जख्म कभी सही ना हो और मैं उस जख्म से बच जाऊं। क्या हो सकता है कि खुदा शिफा दे दे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जख्म लगे खून बहे और खुदा शिफा दे दे, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो शिफा ना दे। अगर शिफा नहीं दिया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं मर जाऊंगा। मरने के बाद क्या होगा? क्या मुझे वैसे ही नहीं मरना था? वैसे भी तो मरने था और वो किस हालत में मरने की मैं ख्वाहिश कर रहा था? वो ये कि जब मैं मरूं तो अल्लाह की बंदगी में मरूं। अगर मैं इस वक्त सही करते हुए मर जाऊं तो मैं अल्लाह की बंदगी में नहीं मरा था, अल्लाह की बंदगी में मर गया, तो क्या ये बुरी मौत होगी? अच्छी मौत होगी। इतने तक को तो मेरे ख्याल में काफी लोग मान लेते हैं कि ठीक है मैं अल्लाह की बंदगी में मर गया। अब असली मसला शुरू होता है। तो शैतान कहता है कि तू तो मर जाएगा, ये बता तेरे बाद क्या होगा? सही मसलन तेरे बाद के लिए क्या दास्तान है? तेरे बाद के लिए कि तेरा घराना है, बीवी बच्चे हैं, उनके लिए वालदैन डिपेंडेंट हो। तो इंसान कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे वालदैन का क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, फिर उनके अच्छा उनमें उनको क्या मुश्किल पेश आ सकती है? वो ये कि उनको पालेगा कौन? सबसे अहम खतरा जो शैतान लेकर आएगा वो यही लेकर आएगा। ये भी नहीं लाएगा कि तेरे बगैर वो मर जाएंगे, ये भी नहीं लाएगा, यानी ये नहीं लाएगा कि तेरी मोहब्बत नहीं मिली तो वो मर जाएंगे, क्योंकि ये पाकीज़ा जज्बा होता है। शैतान इस पाकीज़ा जज्बे को इस्तेमाल नहीं करेगा। शैतान जहाँ पे हमला करेगा वो किस जगह पे हमला करेगा? वो अल्लाह की रज़ाकियत में मशकूक करेगा कि अगर तू मर गया इनको खिलाएगा कौन, इनको पिलाएगा कौन, इनकी जिंदगी कैसे रहेगी? अच्छा अब अगर तवज्जो से देखें तो ये शुभा किस चीज के अंदर शुभा है? ये अल्लाह की रज़ाकियत के अंदर शुभा है। और यहाँ पे इसका जवाब बहुत सादा जवाब है, और जवाब ये है कि जब मैं जिंदा होता हूँ तब भी मैं नहीं पाल रहा होता, खुदा पाल रहा होता, और जब मैं जिंदा होता हूँ तो मुझे नहीं खुदा पाल रहा होता है। अगर मैं इस यकीन पर पहुंच जाऊं कि जब मैं जिंदा होता हूँ तो मैं खुद अपने आप को पाल नहीं रहा होता बल्कि खुदा पाल रहा होता है, और मैं इस यकीन पर पहुंच जाऊं कि जब मैं जिंदा होता हूं तब मैं अपने घर वालों को नहीं पाल रहा होता, ये खुदा होता है जो पाल रहा होता है, मेरे मरने के नतीजे में उस खुदा की रज़ाकियत पर कोई कभी वाक़े नहीं, वो पाल ले। अगर इतना ही सोच ले तो फिर बहुत अजीब दास्तान है। इसमें एक वाक्य बहुत नफीस वाक्य है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, दुरूद भेजेगा मोहम्मद एक रवायत में बयान करते हैं कि जब फरिश्ते मान के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला दे दी गई कि आप रिहाल के लिए तैयार हो जाइए, आपको दुनिया से कूच करना है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल तैयारी के साथ फरिश्ते मान के सामने जाते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान का एक बच्चा भागता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है, और वो बच्चा गिड़गिड़ाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कि बहुत ज्यादा चाहता था वो बच्चा। हजरत मूसा का दिल पसीज जाता है, नर पड़ जाता है बच्चे की मोहब्बत को देखते हुए, और वो खुदा मुमताज से कहते हैं कि खुदा मुझे जाने में इतना सा भी कोई गम नहीं है, लेकिन इस बच्चे के गम को देखकर मुझे गम आता है। परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम दोबारा दरिया पे लाठी मारो, दोबारा दरिया पे लाठी मारो, दरिया पे लाठी मारी और कहा कि इसके जो पानी के हटने के बाद जो जगह है जो ज़मीन नज़र आ रही है इसमें चलो। वो उसमें चलना शुरू होते हैं, पत्थरों तक पहुंचते हैं, परवरदिगार आलम फरमाते हैं पत्थरों को उठाओ। वो दो पत्थरों को उठाते हैं तो देखते हैं दो पत्थरों के दरमियान कुछ कीड़े हैं जिनके मुंह में खोश पत्ते और खुदा मुताला जब मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि मूसा इन कीड़ों की रज़ा खोश पत्ते हैं और मैंने समंदर की तह में इनके मुंह में कुछ पत्ते पहुंचाए। अभी बहुत ताज्जुब की बात है, बहरे ओकेनोस में यानी पैसिफिक ओशन में एक जगह है जिसको मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। मैरियाना ट्रेंच के अंदर इतना गहरा गड्ढा है समंदर की तह में, इतना गहरा गड्ढा है कि पूरा माउंट एवरेस्ट उसके अंदर आ जाएगा। इतना गहरा गड्ढा है यानी उस गड्ढे की जो डेप्थ है वो तकरीबन 10,000 मीटर, 10,000 मीटर 10 किलोमीटर नीचे गड्ढा है। और इस गड्ढे में पानी है, पानी से भरा हुआ है, समंदर की तह में सारा पानी वहां पर भी है। अच्छा, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है कि इसके नीचे देखा जाए कि क्या है। मामूलन कौन सा कहता है इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है कि इसके नीचे होने का इम्कान ही नहीं है। अभी कुछ अर्से पहले इन्होंने फिर कोई रोबोट नीचे भेजा और उसको जितना भी नीचे भेजा, फाइनल टच नहीं हुआ जहां तक मुझे पता है, लेकिन जितना भी नीचे गए उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि नीचे भी जिंदगी है। और नीचे जो मछलियां हैं, जो जानवर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनको मछलियां कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा, उनकी वैरायटी उससे ऊपर वालों से कहीं ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये खुद खुदा नुमता की रजाकियत की एक दलील है। खुदा फरमाता है तुम माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ जहाँ सिवाय बर्फ के कुछ नहीं है, वहां भी अल्लाह ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखा है। और तुम समंदरों की गहराइयों में चले जाओ जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, वहां पर भी खुदा नुमता ने कुछ को जिंदा रखा हुआ है और उनको दे रहा है। और उनमें जो वेराइटी है वो उससे कहीं ज्यादा है जो ऊपर है, ये खुदा है। इसकी रजाकियत इतना ऊपर है और इतना नीचे है, और हम जमीन पे बसने वाले रजाकियत में शुभा कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह हमारी कोताही है। अल्लाह हमें तौहीद में मजबूत फरमाए, तौहीद को समझने की सलाहियत नसीब करे, इस तौहीद पर अमल करने की सलाहियत नसीब फरमाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद और जो दुआएं हमारे पास है, एक बहुत अच्छा मजमुआ 15 दुआएं जिनको हम मुनाजात खमसा अशर कहते हैं। 15 दुआएं जिनको मुनाजात खमसा अशर कहा जाता है। मुनाजात खमसा अशर मौला चौथे इमाम नौम जनवाते हैं लेसा सैफ़ सज्जादिया में भी तस्किरा है, सैफ़ सज्जादिया मक़ूम है। अलबत्ता बाज के बारे में ये सनद भी है कि वो मौला अमीर मोमिनीन से भी मंसूब है। ऐ मुमकिन है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम दुआओं को कसरत से अदा करते हो, और ऐसी रिवायात है हमारे पास कि जो मौला अमीर मोमिनीन से भी मंसूब है और मौला सैयद शोहदा से भी मसलन मंसूब है। तमाम आइमा की ज़ात पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद। मैं कई दफ़ा इरादा करता हूँ और रुक जाता हूँ कि आप अज्जल फल जाओ कहने में बहुत से काम मत में दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। अल्लाह माफ कीजिएगा कि मैंने बहुत कहा, ये बहुत मजाहन कहा, बहुत बनना जाहिर है कि आप बहुत नहीं कर रहे थे, आप तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये भी मुनाजात हम आशार हैं जिसमें 15 नफसानी हालतों के लिए मुनाजात हैं, 15 नफसानी हालतों के लिए। मसलन पहले मुनाजात में मुनाजात को तायबीन तौबा करने वाले की मुनाजात, मुनाजात शाकीन शिकायत करने वाले की, खायफीन राजीन जिसको उम्मीद ज्यादा है, खायफीन दार खौफ, राघवीन जिसके अंदर रहबत है, ठीक है, और शाकिरीन शुक्र करने वाले, मुतीईन अल्लाह के फरमाबरदार, ये इस तरह 15 हालतें हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारी नफसानी हालतें तब्दील होती रहती हैं। बार बार ऐसा होता है कि आपका दिल चाह रहा होता है कि अल्लाह की बंदगी करें, उस वक्त अल्लाह के लिए कुछ करें, कह सकते हैं इस वक्त हालत राग़बीन में है, रग़बत बढ़ रही है। अच्छा, एक दफा होता है ऐसी हालत आपके इंसान पे शर्मिंदगी तारी हो रही है, सही कह सकते हैं यहाँ हालत तायबीन के अंदर। एक दफा ऐसा भी होता है जब कुछ करने का बिल्कुल कोई दिल नहीं चाहता, यानी मसलन इंसान से कहो दोहर का नमाज पढ़ ले, बड़ी मुसीबत से वाजिब नमाज आखिरी वक्त में पढ़ लेगा, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, बार बार ऐसा होता है कि जिसका दिल नहीं चाह रहा होता उसको इस पर कोई अफसोस भी नहीं होता, कि भाई मेरे ऊपर ये क्या हालत तारी है। लेकिन बार बार ऐसा होता है कि जिसके ऊपर ये हालत तारी हुई होती है उस पर बहुत अच्छे दौर गुजर चुके होते हैं और वो जानता होता है कि ये हालत अच्छी नहीं है, ये हालत अच्छी नहीं है। हमने चूंकि मैं कहता हूँ मौलवी जो भी होते हैं वो लोगों का चौराहा होते हैं, इसका ये चौराहा होता है, यहाँ से हर आदमी ने गुजरना होता है, तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं मजान कहता हूँ अच्छे में भी बुरे में सब सब कुछ सुनने को मिलता है। तो उसमें ये है कि वो जो सुनने को मिलता है उसमें बहुत सारे लोगों के तजुर्बात सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे तजुर्बात सुनने को मिलते हैं, यानी ऐसे ऐसे तजुर्बे सुनने को मिलते हैं कि कोई आदमी कहता है कि मेरी नवाजिश एक घंटे से कम पे खत्म नहीं होती थी। अब मैं इधर वाला साइड बताऊं तो मुझे शर्मिंदगी आती है, कहता है लेकिन अब मैं शराब पीता हूं। ये कैसे हो जाता है? एक आदमी कहता है मेरी नमाज इशा घंटे भर से कम में खत्म नहीं होती थी, अब मैं इस गुनाह में मुबतला हूं और उस गुनाह की भी एक ऐसी तस्वीर में जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा और ये हकीकत है कि वो खुद कहता है कि मैं हिंदू से मुसीबत में मुबतला हूं। ये क्यों हो जाता है? इतना अच्छा इबादत गुजार बंदा नमाज शब के लिए घंटा लगाता था, अल्लाह की बंदगी में गिड़गिड़ाता था, गिरिया करता था, उसके बाद एक ऐसी मुसीबत में पहुंच जाता है, नमाज पढ़ना तो दरकिनार, उम्मुल खबाइस को इस्तेमाल करता और वो भी एक बड़ी गंदी हालत में। वो ऐसा है, दो तीन बातें समझ में आती है। एक बात तो ये समझ में आती है कि इसका मतलब है जब वो इबादतें कर रहा था तो वो इबादतें इसके रूह पर असरअंदाज नहीं हो रही किसी भी वजह से। मुमकिन है कि ये उन इबादतों के साथ कोई गुनाह कर रहा था और वो गुनाह कोई ऐसा गुनाह था कि इनकी तमाम तर इबादतें इसके अंदर सबात नहीं लाई, इस्तकामत नहीं ला सकी और ये जब थपेड़े पड़े इसको शैतान की तरफ से ये मुकाबला नहीं कर सका, गिरता चला गया। अच्छा ये कि इबादत हो और इस तरह से दूर चली जाए, एक अलामत है कि ये इबादत बहुत ज्यादा कबूल नहीं है। अगर इबादतें कबूल होती रहे इतनी दूर जाना मुमकिन नहीं, इतनी दूर नहीं जाना चाहिए इंसान, एक वजह यह होती है। दूसरी वजह यह होती है कि जब इंसान के अंदर तकरीबन हर इंसान के अंदर ये ऊंचाई और जवाल का एक जमाना आता है, उरूज जवाल आते हैं मानवियत के लिए, इंसान की इबादतों के लिए, जिस वक्त उसके अंदर तलब होती है वो इबादतें करता है, जिस वक्त तलब नहीं होती सब कुछ छोड़ देता है। ये बुनियादी तरीन गलती है, ये बुनियादी तरीन गलती है। अच्छा इस मौके में क्या करना चाहिए फिर? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुसीबत बहुत आती है और मेरा अपने ये ख्याल है शायद सबके साथ किसी न किसी एक्सटेंड पे आती है, इसके साथ बहुत बुरे भी हो गई, बास के साथ कम होगी, बास के साथ ज्यादा होगी, कि कभी अच्छी इबादतें करते थे, ज्यादा करते थे, दिल लगा के करते थे, अब नहीं कर पा रहे। इसका हल क्या होना चाहिए कानून के तौर पर? इस सिलसिले में ये बुनियादी बात अर्ज होगी, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले हल ये हो सकता है कि आप बहुत सारी इबादतें करते हैं, मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए आप दो घंटे सुबह के वक्त इबादत कर रहे हैं, एक घंटा सुबह के वक्त इबादत कर रहे हैं, आप अपने लिए मिनिमम बना लीजिए कि एक तो वो होगा कि जब मेरे पास वक्त है, मेरे अंदर तवज्जो है, मेरे अंदर मजा भी है, लुत्फ भी है, तो मैं ये इतनी ढेर सारी इबादतें करूंगा। लेकिन एक दिन है मिसाल के तौर पर आपकी फ्लाइट है और आप वो सुबह के ही वक्त में है और अब आप वो ढेर सारी इबादतें नहीं कर सकते, इस टाइम के लिए आप एक मिनिमम रख लीजिए, इससे कम नहीं लाऊंगा। इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ये तरकीब बहुत कारामद तरकीब है। वो ये है कि एक दफा आपके पास वक्त है, तवज्जो है, मजा है, आप अपनी एक एक घंटे इबादत करते हैं, दो घंटे इबादत करते हैं, जितनी मर्जी करते हैं करते रहें, ये आपका टेस्ट नहीं है। एक्चुअली टेस्ट कब है? टेस्ट उस दिन है जब आपके पास वक्त नहीं है। अब जो आप डेली कर रहे थे उसमें से कितना किया? आपके पास वक्त नहीं था, अब आपको करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग करनी थी, सही है? तो अब आपने जो एक घंटे की इबादत करनी थी वो सब मिस हो गई, अब आपने दो रकात नमाज पढ़ी, मामला खत्म किया और आप बढ़ गए आगे, ये मत कीजिएगा। अच्छा इसके मुकाबले में क्या करें? आप उन तमाम इबादतों में से एक मिनिमम का इंतखाब करें और ये सोचें कि मेरे पास वक्त, मजा और रहबत हो या ना हो, इस मिनिमम से कम नहीं करूंगा, इस मिनिमम को पूरा कर लूंगा। अच्छा, वो कैसे पूरा करेंगे? आपके पास वक्त ही नहीं है, जान में बैठ के कर लूंगा, ड्राइविंग करते वक्त करूंगा, किसी भी तरीके से करूंगा। एक मिनिमम बना लीजिए, इस मिनिमम से नीचे नहीं आऊंगा। मिसाल के तौर पर बस हम फर्ज कर लेते हैं कि एक आदमी हर रोज सूर्य वाक्य भी पढ़ता है, हर रोज सूर्य इंसान भी पढ़ता है, हर रोज सूर्य मुन भी पढ़ता है, हर रोज ज्यादा सूर्य पता नहीं कितनी कुछ कर इबादतें करता है सब। ये उस दिन था जिस दिन सब कुछ है। अब जनाब एक डाउन साइड आ गई है। डाउन साइड क्या आ गई है? रहमत ही नहीं, देरी नहीं चाह। अपने इस डाउन साइड के आने से पहले रगबत के दौर में मिनिमम सेट कर ले। मिसाल के तौर पर वो ये कहे कि भाई रोजाना मैं 5 सूरह पढ़ता हूँ, कोई भी मुश्किल आई जिस पर रगबत निकल जाए, एक सूरह एक ऐसी है, मिसाल एक इंतखाब कर ली उसने, इसको मैं हर सूरत में पढ़ू चाहे मजा आए चाहे मजा नहीं, इस पे मैं जबर करूंगा। सही, बिल्कुल जैसे दौर का दराज के लिए जबर करता है फजर की, ठीक है मजा आया नहीं आया पढ़नी है, नींद आ रही है नहीं आ रही पढ़नी है। तो अपने लिए कुछ इबादतों का एक रूप बना ले, एक स्केल बना ले, क्या कि भाई इस इबादत को इतने से कम पे नहीं लाऊंगा। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए वो उसने नमाज शब शुरू की, 11 रकात नमाज शब पढ़ता है, सब एक दिन दिल चाहता है तो वो 11 रकात आधे घंटे पढ़ता है, एक दिन दिल कम चाहता है तो वो 11 रकात 15 मिनट में पढ़ता है, एक दिन दिल चाह ही नहीं रहा, अब क्या करें? मिसाल के तौर पर ये तय कर ले कि ठीक है 11 का दिन नहीं चाहता, 3 रकत पढ़ूंगा आखिरी, दिल चाहेगा तब पढ़ेगा या दिल नहीं चाहेगा तब भी पढ़ेगा, चाहे या ना चाहे ही पढ़ो। अभी और मसला भी होता है, आप हर रोज सुबह अजान से पहले उठ जाते हैं, आप आधे घंटे नमाज शब पढ़ते हैं, अब एक दिन नहीं उठ पाए, अब आप क्या करेंगे? अब आवाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका तो वक्त ही निकल गया, नहीं फिर आप क्या कसम पढ़ो। अच्छा, मुमकिन है कि आप ये कहें जब अदा में पढ़ूंगा तो 11 रकत पढ़ूंगा, जब कजा में पढ़ूंगा चलो 3 रकत पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। एक मिनिमम बना लीजिए, इस मिनिमम से नीचे मत आइए, क्योंकि अगर आप इस मिनिमम से भी नीचे आए तो वो फिर शैतान आपको वाजिब से भी नीचे जाए, फिर वो वाजिब पे भी नहीं छोड़ेगा, और अपनी जिंदगी में रूटीन में कभी भी वाजिबात पे इक्तफा मत कीजिएगा। रूटीन आपका ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए जिसमें आप वाजिबात पे इक्तफा किए बैठे हों, क्यों? आपके पास नीचे आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, फिर जो नीचे आए तो वाजिब कम हो जाएगा। आप अपने नफ्स पे इतने मुतमईन मत रहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर कहे कि भाई 40 के बाद कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप कहे मैं 39 हूं, तो कहेगा ठीक है कि 39 है लेकिन एक ही झटका चाहिए, आप इतना खतरनाक काम मत कीजिएगा। आप सिर्फ वाजिबात के इत्तेफा मत कीजिएगा, वाजिबात के साथ कुछ मुस्ताहबात लेके रखिए, ताकि खुदा ना करे आपकी जवाल की कोई दिन आ जाए तो उसमें आपके एक दो मुस्ताहबात कम हो और आप एक मिनिमम को लेकर चलेंगे, नहीं मुस्ताहबात में से भी, ताकीबात में से, ज़ियारात में से, कुरान की तिलावत में से, दुआओं में से, इस मिनिमम से नीचे नहीं आऊंगा। और अपने उस मिनिमम में कोई भी ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की जरूर रखिएगा, मिनिमम में कम अज कम जो करना है आपने कोई ज़ियारत सैयदुश्शुहदा की जरूर रखिए। क्योंकि ये मुझे समझ में आया अभी तक अपने अक्ल नाक़िस के साथ कि अगर ये रिवायत सही है और अनसही है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीरुल मुनीर, इसका मतलब है अगर कोई रोजाना सैयदुश्शुहदा से मदद तलब कर ले, ये नीचे नहीं आएगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा। आप मिनिमम में सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत करें, अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए उस ज़ियारत की टाइमिंग भी नोट कर लें कितनी देर लगती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ज़ियारत अरबईन पढ़ता है, ज़ियारत वारसा पढ़ता है, फर्ज कर लें ज़ियारत वारसा कोई पढ़ता है, मेरा नहीं ख्याल जो हर रोज पढ़ता हो उसको 10 मिनट भी लगते हैं, फर्ज करें आपने अपने टाइम को कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि भाई मुझे ज़ियारत वारसा को नॉर्मली पढ़ने में इतने मिनट लगते हैं, जिस दिन शैतान आपको उस मिनिमम से नीचे लाए अपने आप से पूछेगा 24 घंटे में इतने मिनट भी नहीं है मेरे पास, इमाम हुसैन की जिक्र के इतना मसरूफ हो गया हूं, अपने ऊपर गिरफ्त रखो कि काम आसान नहीं है। ऐसी एक हालत में ये मुनाजात शाकीन जरूर पढ़े, शिकवा करने वाले मौला मीर मुमिन की जात को दुरूद भेज रहा हूं,
Allah'a emanet olun.
ऐसा एक ऐसी हालत तारी हो गई है कि इबादत से दिल उचाट हो गया है, नाउजुबिल्ला ताला, जो पहले कर रहे थे वो सब खत्म होता चला जा रहा है, और इंसान को अंदर से परेशानी हो रही है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। आप यकीन फरमाइए ईजान मोहतरम, मैंने ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, सुना है, कभी फोन करके रोते हैं, नाम नहीं बताते कि उनको पता है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी हालत में देखे गए हैं, और कभी सामने आकर रोते हैं कि मौलाना साहब इसको वापस कैसे लाना है, क्योंकि उसमें बहुत मजा था, इसमें कोई मजा नहीं है, जानते हैं कि इसमें कोई मजा नहीं है, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे। और इन तमाम हालतों में जो मुझे समझ में आया है, गलतियों में से एक गलती होती है कि जबकि डाउन साइड पे आते हैं तो ये सही सौदा की ज़ियारत छोड़ देते हैं। अगर कोई इस ज़ियारत को ना छोड़े तो इतना नीचे नहीं आएगा, सही सौदा थाम लेंगे, या फिर ये ज़ियारत पढ़ रहा होता है मदद नहीं मांगता सही सौदा से, इसको चाहिए ज़ियारत। आप ज़ियारत आप और मेरे लिए तकरीबन वाजिब की हालत में बन जाता है अखलाकी एतबार से कि हम और आप सही सौदा की कोई एक ज़ियारत रोजाना पढ़ें और सईद शहदा से मुसरत तलब करें कि मौला जमाना खतरनाक है, हमारी ताकत में नहीं है कि हम अपने आप को संभाल सकें, और वो मौला मदद करने वाले हैं, मुसरत करने वाले हैं। ऐसी किसी हालत में ये होने जाते शाकिन बहुत अच्छा होना चाहते हैं। मैं चंद जुमले अर्ज करता हूँ, वह खत्म हो गया, लेकिन चंद जुमले बस ताकि कल इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर बात हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इलाही इलैका अश्कु नफ्सन बिसूए अम्मारा وإن الخطيئة مبادرة، اے خدا میں تیرے حضور شکوا کرتا ہوں اس نفس سے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جو ہمیشہ غلطیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، وہ بمعاصیک مولا جس کو تیرے گناہوں میں لذت ملتی ہے، ولسخطی کا متعرضا اور جو تیرے غیظ غضب کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تسلک بی مسالک المحارک، یہ نفس اتنا غلط ہے کہ مجھے لے کر ہلاکتوں کے راستوں پہ چل نکلتا ہے، اور مجھے اتنا بدقسمت کر دیتا ہے کہ تیرے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں میں ذلیل ترین بنا دیتا ہے۔ کثیرۃ العلل طویلۃ العمل، بہت مختصر عجیب جملہ ہے، کثیرۃ العلل اس کے عذر بہت زیادہ ہیں، طویلۃ العمل آرزویں بہت زیادہ ہیں، یہ بنیادی ترین مشکلات میں سے عذر بہت زیادہ ہیں، آرزویں طولانی ہیں۔ کثیرۃ العلل طویلۃ العمل، ان مسہ الشر تجزا، اگر کوئی برائی ملتی ہے تو چیختا پکارتا ہے، وہ ان مسہ الخیر تمنا، اور اگر اچھائی کا موقع ملتا ہے تو اس کو روک لیتا ہے۔ میالۃ الی اللعب واللہو، اور یہ کھیل و کود کی طرف اس کی رغبت بہت زیادہ ہے۔ مملوۃ بالغفلۃ والسہو، اور غفلت اور اشتباہ سے بھرا ہوا ہے۔ تسرع بی الی الحوبۃ وتسوقنی بالتوبۃ، اور یہ غلطیوں کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور توبہ سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے، توبہ سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرمانا، الہی اشکو الیک عدوا یضلنی، بعد میں شیطان کے بارے میں شکوا کیا کہ شیطان میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ نفس ہے، اصل مشکل یہاں پر ہے۔ آپ اس مناجات کے ان جملات کو دوبارہ پڑھیے گا، اور ان جملات کو پڑھتے وقت اس میں سے قانون نکالنے کی کوشش کیجیے گا۔ ان جملات کے اندر صرف نفس سے گفتگو ہوئی ہے، 10-12 جملے استعمال ہوئے، اور اس میں اس نفس کی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے جس سے دور بھاگنا چاہیے۔ مثلا اس نفس کی علامتیں کیا تھیں؟ برائی کا حکم دیتا ہے، غلطیوں کی طرف خود سے بڑھ جاتا ہے، معاصی میں مزہ لیتا ہے۔ اگر خدا نہ کرے میرا اور آپ کا نفس کسی گناہ سے مزہ لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نفس کے ہاتھ میں شکایت کروں میں اللہ کی بارگاہ میں، خدا ہے یہ میرا نفس کتنا غلط نفس ہے۔ اس طرح کی علامتوں کو دیکھ لیجئے، اور ایک راستہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا اس نفس سے دور لے جا، کہ جو ہمیں اس طرح کی مصیبت پر مبتلا کرتا ہے۔ فائزان محترم، ظاہر ہے کہ یہ جملات ہمارے لیے عطا ہوئے ان عظیم الشان ہستی کی طرف سے جنہوں نے دنیا کی ساری انسانیت کو ہدایت کی، تو ان کے سامنے وہ بھی ہے جو گناہگار ہیں، اور وہ بھی ہیں جو پاک و پاکیزہ پرہیزگار، ان کا کام ہے کہ وہ سب کو ہدایت دے۔ کتنی رحمت ہے مولانا امیر المومنین کی کہ وہ گناہگاروں کے لیے یہ جملہ ارشاد فرما، کہ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم گناہگار ہو، اپنے نفس کے ہاتھوں مصیبتوں میں مبتلا ہو، لیکن میں امیر المومنین تمہیں بھی ہدایت کے لیے چند جملات بتا دیتا کہ اپنے خدا کے حضور ان کو بیان کر دیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں مقرر عرض کیا کہ آپ کے پاس سہارا ہے سید الشہداء مصباح الہدا وسکینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی سفینۃ النجات. سفینۃ النجات کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اتنا ہی کر لے کہ اس سفینے سے لٹکا رہے، غرق نہیں ہوگا، غرق نہیں ہوگا. اور یہ کہ آپ کے دل میں سید الشہداء کی محبت ہے، اس کا مطلب ہے کہ متمسک رہنے کے لیے ابھی بھی امکان دے رہا ہے. عزیزو، تعجب اس بات پر ہے کہ ہم سید الشہداء کی اس عظیم الشان محبت کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کر پا رہے. سید الشہداء کی محبت دلوں کے اندر ہے. اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں یہ کہ آپ تشریف فرمائیں، آپ سید الشہداء کے نام پر آئے ہیں. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں لوگ خوشی کے نام میں جمع ہوتے ہیں، غم کے نام میں جمع نہیں ہوتے. غم کے نام میں کون جمع ہوتا ہے؟ کرسمس کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے، تہواروں کے لیے جمع ہو جائیں گے، واقعوں کے لیے جمع ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی قوم ہوگی جس کو کہیں گے 1400 سال پہلے ایک مظلوم میدان کربلا کے اندر شہید، اس کے لیے جمع ہو جائے. نہ کہ کوئی بلاتا ہے خود سے آتے ہیں اپنے مولا کا نام لینے کے لیے. اور واقعاً دنیا کو چیلنج ہے، دنیا کو چیلنج ہے. ایک دفعہ اگر سید الشہداء کے غم میں رونے والے دل کی گہرائی کو بتائیں، جذبات کی اس شدت سے کوئی کس کو یاد کر سکتا؟ جس انداز میں ایک اہل بیت کا ماننے والا سید الشہداء کی مظلومیت کو یاد کرتا ہے جو میدان کربلا میں تھی، اس میں آسانی اس بات میں ہے کہ یاد کرنا آسان ہے، جو کہ جو مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ ہمارے تصور سے نہیں جاتا. وہ مصیبتیں جو سید الشہداء نے اٹھائی ہیں وہ تصورات سے زیادہ ہیں. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے آغا بہجت سے اس روایت کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ آغا ہم نے سنا ہے کہ سید الشہداء جہاں زمین پر گرے ہیں وہ جگہ کچھ اور ہے، اور جہاں دفن ہوئے وہ جگہ کچھ اور ہے. آپ نے جن لوگوں کو سید الشہداء کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مقتل کہیں اور ہے، قبر مقدس کہیں اور. تو پوچھا کہ آگا اس کا راز کیا ہے؟ مقتل دور ہے، قبر کہیں اور ہے. فرمایا عزیزو، جو کچھ سید الشہداء پہ غم بیتے ہیں وہ انسان کی طاقت سے زیادہ ہے. فہم بشری میں طاقت نہیں ہے کہ سید الشہداء کے غموں کو احساس. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب سید الشہداء اپنے زلنا سے زمین پر تشریف لائے اور وہ زمین پر تھے، اور ان لائنوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ سید الشہداء حیات ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، ان لائنوں نے خیموں کا رخ کیا اور سید الشہداء اس مضمون وجود تھے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اس کا جز بننے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تمام دعائیں، آرزوئیں، امیدیں اس وجود اقدس کے لیے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جان نثاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔